दिन भर 6 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। जयललिता के डॉक्टरों ने साफ किया उनकी मौत का कारण, मल्टी ऑर्गन फेलियर।
There was no conspiracy, nothing strange happened. As you have heard, she got a severe infection, it was in her blood, it affected her heart.
नजर दौड़ाएंगे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में राजनीति और माफिया गठजोड़ पर।
अत्याचार बढ़ा तो अपराधीकरण बढ़ा, सत्ता की तरफ से भी अत्याचार बढ़ा। सत्ता ने बदले की भावना से राजनीति किया, अगर उनका विरोधी कोई है उनका प्रतिकार कर रहा है तो उस प्रतिकार का बदला उन्होंने दबंगई से लिया।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत के करीब 2 महीने बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु के कारणों की जानकारी दी है। जयललिता का इलाज करने वाले डॉक्टर रिचर्ड बील्स ने बताया है कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। डॉक्टर रिचर्ड के मुताबिक जयललिता को गंभीर संक्रमण था। इलाज के बाद उनकी स्थिति बेहतर हुई, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगाने वाले आदेश की सुनवाई के दौरान 2 राज्यों ने संघीय अदालत में कहा है कि इससे अफरा तफरी की स्थिति बन सकती है। वाशिंगटन और मिनेसोटा के वकीलों ने कोर्ट में पूर्व अधिकारियों के बयान पेश किए जिनमें कहा गया है कि ये प्रतिबंध अमरीकी हितों को लंबे समय के लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। सिएटल की एक कोर्ट ने प्रतिबंध के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अमरीकी प्रशासन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार भी आज अपना पक्ष रखेगी। वहीं एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी अमरीकी कंपनियों ने भी कहा है कि प्रतिबंध से जुड़ा ट्रंप का आदेश अमरीकी व्यापार पर असर डालेगा। ऑस्ट्रेलिया के संस्थानों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जांच के दौरान ये सामने आया है कि ये समस्या किस स्तर तक विकट है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल से ज्यादा वक्त के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 7% कैथोलिक पादरियों पर बच्चों के शोषण का आरोप लगा। जांच के दौरान गैर धार्मिक संस्थानों की भी पड़ताल की गई, लेकिन 2/3 मामले कैथोलिक चर्च से जुड़े थे। मामले पर नजर रखने वाले रॉयल कमीशन ने 1980 के बाद से करीब 4,500 पीड़ितों की पहचान की है। ब्रोकन राइट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करने वाले डॉक्टर बर्नार्ड बरेट ने कहा कि चर्चों के चुप रहने की वजह से दशकों तक ये समस्या सामने नहीं आई। उन्होंने बीबीसी से कहा, हम अब पीड़ितों को जांच अधिकारियों से बातचीत के लिए और मामले को कोर्ट तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे पादरियों पर मामला चले और उनका दोष सिद्ध हो सके। हाल के वर्षों में इस दिशा में तेजी आई है। ऐसे में लोग मामले को अनदेखा नहीं कर रहे हैं और बिशप को इसकी जानकारी देते हैं। ये थे डॉक्टर बरेट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते साल अफगानिस्तान में रिकॉर्ड संख्या में आम लोग हताहत हुए। यूएन असिस्टेंस मिशन ने 8 साल पहले हताहत होने वाले आम लोगों की संख्या दर्ज करना शुरू किया था। उसका कहना है कि बीते साल करीब 11,500 लोगों की या तो मौत हो गई या फिर वो घायल हुए। घायल और मृत बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ज्यादातर घायल या मृत लोग सरकारी सेना और चरमपंथियों के बीच संघर्ष में फंस गए थे। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के कराची स्थित उनके वाणिज्यिक दूतावास में एक राजनयिक की गोली मारकर जान ले ली गई। अधिकारियों के मुताबिक हमला करने वाला अफगानी मूल का निजी सुरक्षा गार्ड था। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच बहस होने के बाद गार्ड ने गोली चला दी। बहस किस बात को लेकर हुई इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। चीन की पुलिस ने जेजियांग प्रांत के एक मसाज पार्लर में आग लगने से 18 लोगों की मौत के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। 6-मंजिला इमारत में आग लगने का हादसा कल हुआ था। पुलिस ने इस व्यक्ति को क्यों हिरासत में लिया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। एक स्थानीय अधिकारी चेन यिजुन ने बताया कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा, प्रांतीय और जिला प्रशासन ने एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में जोर इस बात पर था कि घायल हुए लोगों को बचाने के लिए कोई कोशिश बाकी न रखी जाए। बैठक में घटना के कारणों की जांच के लिए एक समूह गठित करने का भी फैसला किया गया। ये थे जेन यिजुन के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत से संबंधित अफवाहों को रोकने के लिए आज उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम सामने आई और उसने उनकी मौत के कारणों का विस्तार से खुलासा किया। डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जयललिता की मौत मल्टी ऑर्गन्स फेल होने के कारण हुई थी। जयललिता का इलाज करने वाले इंग्लैंड के डॉक्टर रिचर्ड बेले का कहना था कि जयललिता को ब्लड इन्फेक्शन हुआ था जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले दो महीनों से तमिलनाडु के आम लोग और खासकर सोशल मीडिया में बहुत जोरों से एक बात की चर्चा हो रही है। स्पष्ट तौर से वो ये है कि दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता जब अस्पताल से घर आने वाली थी तो कैसे उनकी मौत हो गई। इसी के आधार पर बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी, यहां तक कि मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका भी दर्ज की गई कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए। लेकिन आज डॉक्टरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जयललिता जिन कारणों से मरी वो अजीब नहीं है। डॉक्टर रिचर्ड बील लंदन के मशहूर स्पेशलिस्ट हैं जो इंटेंसिव केयर के मरीजों का इलाज करते हैं और वो दो बार चेन्नई भी आए थे जयललिता का इलाज करने के लिए। उन्होंने कहा, जो विधि उनके इलाज में अपनाई गई वो सीधी सादी है, इसमें कोई साजिश नहीं है। उनकी बीमारी अजीब नहीं है, उन्हें गंभीर तरह से संक्रमण हुआ था जो उनके खून में चला गया था। उसके बाद उनकी हालत ठीक होने लगी, उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही थी और वो अच्छी तरह से बेहतर हो रही थी, लेकिन अचानक उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये थे डॉक्टर रिचर्ड बील के शब्द। डॉक्टर बील के साथ अपोलो अस्पताल के भी डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया ने डॉक्टरों से बहुत सारे सवाल पूछे, जिनमें से अहम सवाल ये थे, जब वो बीमार थी तो अस्पताल ने क्यों नहीं बताया कि वो कितनी बीमार थी। अगर उनके खानदान वालों से इलाज में इजाज़त लेना था तो क्यों जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार से इजाज़त नहीं लिया। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि वो सरकारी अफसरों और उनके साथी वीके शशिकला के साथ संपर्क में थे। तो सवाल ये उठा कि इस समय क्यों चुना गया, ये सूचना देने के लिए कि जयललिता की मौत में कोई साजिश नहीं थी। डॉक्टर रिचर्ड बील ने बताया, हाँ ये बात स्पष्ट कर दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम राज्य सरकार ने किया है। हम तो कभी भी तैयार थे इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमें फौरन आना नहीं हुआ था। इस समय के सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। ये थे डॉक्टर रिचर्ड बील के शब्द। डॉक्टर बील ने उस सवाल को भी खारिज कर दिया जिसमें एक पत्रकार पूछा कि क्या जयललिता को जहर दिया गया। लेकिन डॉक्टर बील ने कहा कि जयललिता की बीमारी साधारण थी, लेकिन उन्हें इससे पहले इस तरह के असाधारण सवालों का जवाब कभी नहीं देना पड़ा था। बहरहाल अजीब बात यह है कि डॉक्टरों का स्पष्टीकरण तब आ रहा है जब वीके शशिकला मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तैयारी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी विरोध में प्रतिक्रियाएं और मजाक किया जा रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब कुछ चर्चा चुनाव की। राजनीति और माफिया का जोड़ की चर्चा आज आम बात हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा खास तौर पर होती है। राजनीति में माफिया के प्रवेश की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके से ही मानी जाती है। ये अलग बात है कि अब ज्यादातर माननीय ऐसे हैं जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। पूर्वांचल में चुनावी हलचल का जायजा लेने निकले हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने राजनीति और माफिया गठजोड़ के इस फैलाव की पड़ताल की। गोरखपुर से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
गोरखपुर शहर के बीचों बीच धर्मशाला इलाके में एक बड़ा सा घर है जिसे वहां के लोग हाता कहते हैं।
भैया तिवारी जी का हाता जाना है।
इस घर में हम जिस व्यक्ति से मुलाकात करने आए थे उनका नाम है हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी 1985 में पहली बार विधायक हुए थे, वो भी जेल में रहकर। कहा जाता है कि जेल के भीतर रहकर चुनाव जीतने की ये पहली घटना थी। इस एक घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति और माफिया के कथित गठजोड़ का अध्याय शुरू हुआ। हरिशंकर तिवारी इसकी वजह बताते हैं।
अत्याचार बढ़ा तो अपराधीकरण बढ़ा, सत्ता की तरफ से भी अत्याचार बढ़ा। सत्ता ने बदले की भावना से राजनीति किया। अगर उनका विरोधी कोई है, उनका प्रतिकार कर रहा है, तो उस प्रतिकार का बदला उन्होंने दबंगई से लिया। जब दबंगाई एक तरफ शुरू होती है तो दूसरी तरफ से होना स्वाभाविक भी हो जाता।
गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के प्रतिद्वंद्वी थे वीरेंद्र प्रताप शाही, बाद में वो भी विधायक बने। पूर्वांचल के इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले पत्रकार राघवेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
इसके पहले जब रविंदर सिंह युवा नेता हुआ करते थे, उनके जनाधार बढ़ रहा था लगातार, विधायक हुए कौड़ीराम से, तो उनको ठाकुर नेतृत्व के रूप में पूर्वांचल में स्थापित किया गया। संयोग से उनकी जब हत्या हुई तो उसमें पूर्वांचल के ही ब्राह्मण नेता का नाम आया था, जिसको लेके धीरे धीरे स्थिति यह बन गई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दो खेमों में बढ़ते चले गए उत्तर पूर्वांचल में। उसको लेकर फिर हरिशंकर तिवारी के बाद वीरेंद्र शाही का उदय हुआ, जो रविंदर सिंह खेमे में माने गए।
हालांकि साल 1997 में वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हुई दिनदहाड़े हत्या ने इस वर्चस्व की लड़ाई पर तो विराम लगाया, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई पूर्वांचल के दूसरे गुटों तक फैलते हुए पूर्वांचल से आगे भी चली गई। राघवेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
अपराधियों को लेकर आकर्षण एक जातीय खांचे में गढ़ा गया और उन्हें जाति हीरो के रूप में धीरे धीरे प्रस्तुत किया गया। यही वजह है कि आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी एक कौम विशेष की, जात विशेष की राजनीति करने लगे हैं, चाहे दुर्गा यादव आजमगढ़ में हो।
दरअसल अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ के पीछे नेताओं को प्रमुख पार्टियों की ओर से मिलने वाला महत्व भी था। बात यदि हरिशंकर तिवारी की करें तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद वो न सिर्फ लगातार 22 वर्षों तक विधायक रहे, बल्कि साल 1997 से लेकर 2007 तक लगातार मंत्री भी रहे। इस दौरान प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन हर पार्टी की सरकार में तिवारी मंत्री बने रहे। पूर्व सांसद और 5 बार विधायक रहे अफजाल अंसारी मऊ के मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। माफिया तत्वों के राजनीति में आने के पीछे वो इस इलाके की सरकारी अनदेखी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं।
अंग्रेजों की हुकूमत में इस क्षेत्र के विकास के लिए एक कारखाना दिया गया था, वो आज भी है। आजाद भारत के इतिहास में एक कारखाना गाजीपुर में इस आजाद भारत की सरकारों ने भी दिया है, वो आज भी कायम है। ये विडंबना है कि अंग्रेजों के जमाने में जो कारखाना आया वो अफीम का कारखाना था, और आजाद भारत के जमाने में जो कारखाना खोला गया और आज भी चल रहा है वो शराब का कारखाना है।
हालांकि पूर्वांचल की राजनीति में माफिया तत्व की शुरुआत करने वाले हरिशंकर तिवारी को राजनीति में पहली पटखनी दी इलाके के ही एक गुमनाम व्यक्ति राजेश त्रिपाठी ने। तिवारी अब खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में लगभग स्थापित कर दिया है। माफिया कहे जाने वाले दूसरे नेताओं का भी कुछ कुछ यही हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विरासत के रूप में राजनीति सौंप देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि विरासत में माफिया पृष्ठभूमि भी सौंप दी जाए। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य का ये चौथा विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार कमर कस चुके हैं, लेकिन आम मतदाता फिलहाल खामोशी नजर आता है। किसी भी दल के पक्ष में कोई ठोस लहर नहीं देखती। मुद्दे भी स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक हैं। पिछले 3 चुनावों में बारी बारी से कांग्रेस और BJP आती रही हैं, लेकिन NDI तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो पूरे 5 साल कुर्सी पर रह पाया हो। राजनीतिक खींचतान ही नहीं, उत्तराखंड राजनीतिक अनिश्चितता का भी शिकार रहा है। ऐसे में मतदाताओं का रुझान क्या संकेत देता है, ये टटोलने की कोशिश की है देहरादून से शिव जोशी ने।
इस गीत के जरिए जनता नेता से ये पूछ रही है कि तुम्हें हम वोट तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमें क्या दोगे। पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी और पेशे से वकील संजय बलूनी का कहना है कि तीसरे विकल्प का उभरना राज्य हित में जरूरी है।
दोनों का ही एक जैसा ही यहाँ पर वो रहा, मुझे तो कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं दिखा इन दोनों पार्टियों में। जिस हिसाब से भाजपा ने कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, अभी आओ और अभी टिकट पाओ, ये वाली जो इनकी वो रही बहुत बुरी रही, तो इसलिए हम तो इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, हमारा वोट कहीं और ही जाएगा इस बार।
नोटबंदी के बाद कई मतदाता BJP से सख्त नाराज हैं। ऐसे में BJP की प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रख चुनाव लड़ने की कोशिश उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ढाबा चलाने वाले हरिप्रसाद जखमोला,
फिलहाल तो गरीब आदमी से क्वेश्चन, जो वोटर होता है जो लाइन पर जो आज भी लगा हुआ कल भी लगा था शायद कल भी लगेगा, तो वोट सोच समझ के देगा और BJP को तो बिल्कुल नहीं देगा मैं समझता हूँ, क्योंकि हम भी BJP मेंटेलिटी के थे, लेकिन इन हालत में हमको चेंज कर दिया, फिर हम सोचते हैं वही सरकार ठीक थी।
बौद्धिक बिरादरी की राय भी बटी हुई है। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी को इन चुनावों में लाभ मिल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कोठियाल।
अभी तक के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें फिलहाल अपर एज तो फिलहाल भाजपा का दिखाई पड़ रहा है, पर बहुत साफ सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बागी हैं जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं उनका जिस सीट पे वो प्रभावी रूप से नजर आ रहे हैं वो उनकी संख्या पिछली बार से ज्यादा बढ़ने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है।
इन चुनावों में कुछ टीवी समाचार चैनलों के मत सर्वेक्षणों के मुताबिक भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन नैनीताल प्रशासनिक अकादमी में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कोर्स निदेशक डॉक्टर बीएस नेगी ऐसा नहीं मानते।
पब्लिक मूड का जहां तक सवाल है उत्तराखंड में जो वोटर्स है, एक तो युवा की समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है और दूसरी महिलाओं की समस्याएं हैं। इन दो इश्यूज को कोई भी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से एक दिशा नहीं दे पा रही है और ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर उत्तराखंड के चुनाव में होगा।
बीजेपी और कांग्रेस का सामना ज्यादातर सीटों पर अपने ही बागियों से है। यूकेडी और बीएसपी भी अपनी परंपरागत सीटों के लिए जी जान एक किए हुए हैं। कुछ सीटों पर वामपंथी दल चौंका सकते हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं में किसी दल की कोई खास लहर नहीं है और लगता है कि दल से ज्यादा शख्सियत को अहमियत दी जा रही है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
पचहत्तर वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बीबीसी से कहा है कि एक औचक निरीक्षण में उन्होंने पाया कि महिलाओं के एक मानसिक सुधार गृह में नर्क जैसे हालात हैं। उनका दावा है कि उस सुधार केंद्र में पिछले दो महीनों में 11 मौतें भी हुई हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने उनसे पूछा कि जब वो दिल्ली स्थित इस केंद्र में गईं, तो उन्होंने क्या पाया।
हम लोगों ने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करा, मैं रात में पहुंची वहां पर, मैं देखना चाहती थी कि क्या स्थिति थी, लेकिन जो मैंने देखा मेरे को इतना भयानक वो लगा और बिल्कुल मेरे हिसाब से वहां पे एक जिंदा नर्क है, क्योंकि वहां 11 मौतें हुई हैं पिछले दो महीनों के अंदर। एक एक बिस्तर के ऊपर तीन तीन चार चार महिलाओं को रखा गया था, बच्चों को रखा गया था और वो इस तरीके से समर्थ नहीं है कि अपना ख्याल रख सके। तो इतनी गंदगी थी पूरे कमरे में, इतनी बदबू आ रही थी, वो बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी, तो बिस्तर में ही सब कुछ हो रहा था। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि यहाँ तक हो रहा था कि उनको जब नहलाने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कॉरिडोर्स में और पूरी नग्न अवस्था में खड़ा करा जाता है और सीसीटीवी फुटेज इस पूरे चीज को कैप्चर करता है। तो हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा कि कैसे महिलाएं बिल्कुल नग्न अवस्था में वहां पे खड़ी हैं और उस सीसीटीवी फुटेज को चार आदमी मॉनिटर करते हैं। स्टाफ के नाम पे कुछ खास नहीं है, कम से कम रात में तो बिल्कुल स्टाफ नहीं था। एक महिला स्टाफ थी जो कि 150 महिलाओं को उसको देखभाल करनी थी। हमने सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी को नोटिस इश्यू करा है, उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा है क्योंकि ये इतनी खराब स्थिति है। कैसे इतनी खराब हुई, क्या क्या एक्शन दिया गया, उन्होंने कब कब विजिट करी, उन विजिट रिपोर्ट्स के ऊपर क्या एक्शन हुआ।
स्वाति, ये बताएं कि क्या जो समाज कल्याण विभाग है दिल्ली सरकार का, वो इसमें सहयोग कर रहा है और वो आपके पास, आप उनसे टच में हैं?
जो सामाजिक कल्याण विभाग है जिसको ये पूरा होम को चलाना होता है, ध्यान रखना होता है, उनको हमने उनके सेक्रेटरी को सचिव को नोटिस इश्यू करा है, 72 घंटे में जवाब मांगा है और जवाब आएगा। हम एक इंक्वायरी हमने एक इंस्टीट्यूट कर दी है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट हमारी इसके ऊपर बन रही है कि कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये सारी की सारी रिपोर्ट हम दिल्ली सरकार को सबमिट करेंगे।
ऐसी भी खबरें हैं कि आपको ऐसी बातें बताई गई हैं कि वहां पर पिछले दो महीनों में कोई 11 मौतें हुई हैं, क्या वजह बताई गई है?
11 मौतें हुई हैं ये सच्चाई है, ये स्टाफ ने हमें कंफर्म करा है। हमने इस वक्त नोटिस देकर उनसे पूरा जवाब मांगा है कि ये मौतें क्यों हुई, क्या कारण था, पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए, इंक्वेस्ट हुई या नहीं हुई, पुलिस एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आती है फिर हम आगे इसमें देखेंगे कि अगर पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा तो दिल्ली महिला आयोग पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व करेगी।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। वसतुल्ला खां की डायरी आमतौर से आप नमस्कार भारत में सुनते हैं, आज हम इसे दिन भर में सुना रहे हैं। विषय है, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जीवन खुली किताब है।
सुबह पंजाब की तमाम सरकारी लाइब्रेरियों और कॉलेजों को आदेश दिया गया है कि वो नवाज शरीफ की ज़िंदगी और कारनामों पर लिखी हुई पुस्तक नवाज शरीफ दास्तान हयात खरीदें, ताकि अगली पीढ़ियां पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले नवाज शरीफ के जीवन से कुछ सीख सकें। यह तो मालूम नहीं कि अगली पीढ़ियों को इस पुस्तक से कोई फ़ायदा होगा, मगर किताब का लेखक 100% धन्य हो जाएगा। नवाज शरीफ और उनके बच्चों को इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के अनुसार लंदन के 4 अपार्टमेंट्स की मालकी के संदर्भ में छान फटक का सामना है। इस बारे में नवाज शरीफ भरी नेशनल असेंबली में कह चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मगर पनामा पेपर्स का मुकदमा सुनने वाले एक जज ने कहा है कि नवाज शरीफ की खुली किताब में से कुछ पन्ने शायद गायब हैं। हो सकता है अब पंजाब की लाइब्रेरियों और कॉलेजों में नवाज शरीफ की जो जीवन कहानी बेचने की सरकारी योजना हो रही है, उसमें वो गायब पन्ने भी शामिल हों जो श्रीमान न्यायाधीश ढूंढ रहे हैं। पुराने ज़माने में बादशाहों को चूंकि हर 4-5 वर्ष बाद चुनाव नहीं झेलना पड़ता था, इसलिए वो अपने कारनामों का ढंडोरा पीटने का काम इतिहासकारों पर छोड़ देते थे और पसंदीदा इतिहासकारों के खान पान का भी ख्याल रखते थे। चुनाचे हर बादशाह और राजा का ज़माना कम अज़ कम इतिहास के पन्नों पे तो शानदार ही नज़र आता है, मगर आजकल के बादशाहों को यकीन नहीं कि वो कितने समय तक पद पे टिके रहेंगे, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि खुद ही अपना नाम इतिहास पे टांक लें, और इसके लिए सबसे बेहतर खूंटी सरकारी लाइब्रेरियाँ और शिक्षण संस्थान ही हैं, जिन पे गधे की तरह कोई भी किताब ला दी जा सकती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उस ज़माने के पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज़ इलाही ने भी अध्ययन पुस्तकों के रास्ते नई पीढ़ी के दिलों में बसने की कोशिश की, मगर अगली सरकार ने आते ही इन पुस्तकों से इन श्रीमानों का नाम ऐसे मिटाया जैसे ब्लैकबोर्ड पर लिखा मिटाया जाता है। पुस्तकबाजी का फैशन असल में फील्ड मार्शल अयूब खान की सरकार ने शुरू किया था, मगर उन्होंने शायद अगली पीढ़ियों का जीवन भी सफल करने के लिए अपनी जीवन कथा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स इतनी संख्या में छपवा ली कि रद्दी बेचने वालों की अगली पीढ़ियां भी संवर गईं, और आज वो किताब फुटपाथ पे भी देखे से नहीं मिलती। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें अयूब खान की तस्वीर के नीचे लिखा होता था, ये हमारे प्यारे सदर फील्ड मार्शल अयूब खान हैं, इन्हें हर वक्त मुल्क और कौम की भलाई का ख्याल रहता है। समय बदला तो अयूब खान की जगह यहिया खान और फिर भुट्टो साहब और फिर ज़ियाउल हक की तस्वीर आ गई, मगर नीचे का लेखा जूं का तू ही रहा कि इन्हें मुल्क और कौम की भलाई का हर वक्त ख्याल रहता है। काश ये लोग मुल्क और कौम की भलाई के बारे में हर वक्त सोचने की बजाय कुछ कर जाते तो अब तक ये मुल्क कहीं का कहीं पहुंच जाता, मगर हुआ ये कि इन लोगों की वजह से मुल्क कहीं का कहीं पहुंच गया। भारत का बताइए, क्या वहां भी प्रधानमंत्री बच्चों की टेक्स्ट बुक में घुस के हर वक्त देश और कौम की भलाई का सोचता रहता है? अगर ऐसा है तो कभी बच्चों से भी पूछ लें कि वो उन्हें देख देख के क्या क्या सोचते हैं। हमारे यहाँ तो जो सोचते हैं वो मैं सिर्फ कान में ही बता सकता हूँ।
पाकिस्तान डायरी भेजी थी वसतुल्लाह खान ने। आज सोमवार है, आज के दिन आपको इंतज़ार रहता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय में एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे, और आज मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
तो राजेश जी, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो हमारे पास ईमेल आया है ये है वांग छी पर बीबीसी इम्पैक्ट के लिए हार्दिक बधाइयां। बहुत सारे लोग हैं इसमें, और इनका नाम है विजय खंडेरा भंडारा महाराष्ट्र से, इन्होंने लिखा है। कहते हैं कि बीबीसी सुनने की संस्कार मेरे पिता से मुझे मिला है, और ये जो वांगछी पर बीबीसी इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा लगा।
बहुत शुक्रिया आपका, इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई थी, और विनीत खरे जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा वांगछी के साथ, उनके गाँव में जाकर, मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में जो तिरोड़ी गाँव हैं जहाँ ये वांगछी रहते हैं। इनकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है, और जब हम लोगों ने भी पहली बार इसके बारे में सुना तो हमें लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जो किसी उपन्यास या फिल्म के प्लॉट जैसी है और हमको इसको आप तक अच्छी तरह पहुंचाना चाहिए। आपको पसंद आया, इसके लिए शुक्रिया।
और इसमें अगर मैं नामों की लिस्ट गिनानी शुरू करूं तो सुरेश अग्रवाल है केसिंगा उड़ीसा से, और मोहम्मद जीशान नैयर हैं, महेंद्र सहारण भी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक हमारे पास जो चिट्ठी आई है सुरेश अग्रवाल की, ये कहते हैं कि बहरहाल सच्चाई जो भी हो, चार दशक से बीबीसी सुनते हुए ऐसी रिपोर्ट उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी।
जी, ये बहुत ख़ास और बहुत चौंकाने वाली और बहुत अलग से रिपोर्ट है। जब हम इस रिपोर्ट की तैयारी कर रहे थे तो हमें यह एहसास था कि ऐसी रिपोर्टें बार बार नहीं मिलती और ऐसे लोग, ऐसे पात्र, ऐसे कैरेक्टर बार बार सामने नहीं आते।
और महेंद्र सहारण कहते हैं कि बीबीसी के चार के बजाय दो ही कार्यक्रम आ रहे हैं, तो कृपया साप्ताहिक कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसे कई महत्वपूर्ण समाचारों से हम वंचित हो जाते हैं।
आपका बहुत शुक्रिया आपके सुझाव के लिए। और आप जैसे ही बहुत सारे श्रोता हैं जो ये भी कहते हैं कि आपके साप्ताहिक कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं और हम मिस कर जाते हैं, तो कृपया उनका पुनर्प्रसारण करें, तो हमारे लिए एक दुविधा की स्थिति है। लेकिन हमें लगता है कि हम आपको समाचार तो देते ही हैं, और जो बहुत ख़ास मेहनत करके आपके लिए विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो किसी वजह से बहुत सारे लोग जो नहीं सुन पाते वो अगली बार सुन पाएं, ये विकल्प भी हमारे ख्याल से खुला रहना चाहिए।
और विनीत खरे की तारीफ करते हुए रफीक परकार रत्नागिरी महाराष्ट्र से इन्होंने भी लिखा है, और संगीत कुमार सानू नोएडा से भी लिखते हैं, और बहुत सारे बधाई के पत्र आए हैं विनीत के लिए।
जी, बहुत शुक्रिया। और अब एक पोस्ट कार्ड है आपके हाथ में।
जी, ये है नागेंद्र कुमार कुशवाहा, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से।
काफी रंग बिरंगा है।
लिखा है इन्होंने कि सभी कार्यक्रम दिन भर में जनाब रेहान फजल साहब द्वारा विवेचना सुना बहुत पसंद आया। ओपी नैयर की 10वीं पुण्यतिथि पर संगीतकार नैयर साहब का जो संगीतमय श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया बीबीसी की तरफ से काबिले तारीफ था।
बहुत शुक्रिया। और ये खत हम रेहान फजल को जरूर दिखा देंगे, खुश होंगे
जरूर। और ये चिट्ठी है हमारे पास पाकिस्तानी पूर्व राष्ट्रपति जनरल याहिया खान की जन्मशती को ध्यान में रखकर रेहान जी की पेशकश विवेचना जो 3 फरवरी को सुनाई गई, बहुत अच्छी लगी इनको। और ये हैं, अच्छा इनकी सबसे अच्छी बात आप ये देखिए कि इन्होंने अपनी पत्नी मंजू, मुकेश सबका नाम लिखा है, ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि कौन क्या है इनका।
जी जी, काफी पारिवारिक पत्र है।
जी हाँ,
हमारे बड़े बीबीसी परिवार के सभी ये सदस्य हैं, आप सबको पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये हैं अजय कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश मऊ से, कहते हैं कि अभी हाल ही में बीबीसी हिंदी सुनना शुरू किया, मुझे बीबीसी के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं और बीबीसी रेडियो पर नहीं सुन पाता, इसलिए ऑनलाइन सुनता हूँ। जो कोहिनूर हीरे के बारे में प्रस्तुति थी वो बहुत अच्छी थी, और ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह ज्ञानवर्धक प्रोग्राम दें तो अच्छा रहेगा।
हमारी यही कोशिश होती है और हम आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद।
प्रमोद कुमार यादव लिखते हैं कि ब्रजेश उपाध्याय की डायरी और रेहान जी की विवेचना अच्छी लगी, साथ ही वसुतुल्ला खान साहब की पाकिस्तान की डायरी, सीटू तिवारी, समीर आत्मज मिश्र, नितिन श्रीवास्तव, कश्मीर से रियाज मसरूर, मोहनलाल शर्मा, सभी की रिपोर्ट आकर्षक और मौलिकता के साथ होती।
थैंक यू, धन्यवाद। और अब मुझे लगता है कि घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए, तो चलते चलते मैं आपको बता दूं, पत्र लिखने के लिए हमारा पता वही है जिस पर आप लिखते रहे हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, उनकी मृत्यु कई अंगों के नाकाम होने की वजह से हुई थी। मुस्लिम बहुल 7 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगाने वाले आदेश की सुनवाई के दौरान एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों ने कहा है कि प्रतिबंध से जुड़ा राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश अमेरिकी व्यापार पर असर डालेगा। ऑस्ट्रेलिया के संस्थानों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जाँच रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल से ज़्यादा वक्त के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 7% कैथोलिक पादरियों पर बच्चों के शोषण का आरोप लगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते साल अफगानिस्तान में रिकॉर्ड संख्या में आम लोग हताहत हुए, बीते साल करीब 11,500 लोगों की या तो मौत हो गई या फिर वो घायल हुए। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।